आज के मुख्य समाचार वैशाली जैन के साथ। सिडनी में बढ़ रहे हैं ओमिक्रॉन वेरिएंट की एक्सपोजर साइट। भारत में ओमिक्रॉन वेरिएंट के चलते कड़े हुए यात्रा नियम। और यूरोपीय संघ ने की चीन से टेनिस दिग्गज पेंग शुई के मामले में जांच की मांग। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन का कहना है कि सरकार को अब तक इस बात का कोई सबूत नहीं मिला है कि कोविड रोधी टीके ओमिक्रॉन वेरिएंट के खिलाफ कारगर नहीं हैं।
The evidence to date does not suggest that it is a more severe form of the virus, and issues of transmissibility and impact on vaccine, there is no evidence yet to suggest that there are issues there. But should that information come forward, then obviously then we'll be considering that and moving very quickly, as we already have on the information that has been available to us to date.
यह तब आता है जब सिडनी में एक 40 वर्षीय व्यक्ति ओमिक्रॉन वेरिएंट के छठे संक्रमण के रूप में सामने आए हैं। यह व्यक्ति दोहा से पिछले गुरुवार सिडनी पहुंचे थे। इस मामले की जीनोमिक सीक्वेंसिंग अब भी जारी है, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री ब्रैड हजार्ड का कहना है कि यह मामला ओमिक्रॉन वेरिएंट का ही है। उधर नॉर्दर्न टेरिटरी में कई लोगों के डार्विन की हॉवर्ड स्प्रिंग्स कोविड 19 संगरोध व्यवस्था से भागने के बाद पुलिस हाई अलर्ट पर है। पुलिस वक्तव्य के अनुसार 3 लोग आज तड़के सुबह बाउंड्री वॉल फैलाकर संगरोध व्यवस्था से भाग गए थे। इस घटना के बाद इलाके में पुलिस की दबिश बढ़ा दी गई है और संगरोध व्यवस्था के कर्मचारी व्यवस्था में संगरोध कर रहे लोगों की गिनती कर रहे हैं। उधर विक्टोरिया सरकार के महामारी कानूनों पर कल दोपहर से शुरू हुई बहस अब भी जारी है। विक्टोरिया का महामारी विधेयक अतिरिक्त सांसदों के समर्थन के बाद कुछ आखिरी वक्त के बदलावों के साथ जल्द ही कानून का रूप ले सकता है। हालांकि अब इस विधेयक की हर धारा पर बहस जारी है। पब्लिक हेल्थ एंड वेलबींग अमेंडमेंट पैंडेमिक मैनेजमेंट बिल के जरिए प्रीमियर और स्वास्थ्य मंत्री के पास महामारी घोषित करने और प्रतिबंध लागू करने के अधिकार आ जाएंगे। यह कानून आपातकाल के स्थान पर लागू होगा। राज्य में आपातकाल 15 दिसंबर को समाप्त होने वाला है। देश में कोरोना मामलों की बात करें तो आज विक्टोरिया में 1179 नए स्थानीय रूप से अधिग्रहित कोरोना मामले दर्ज किए गए हैं। राज्य में आज 6 कोरोना संबंधी मृत्यु भी दर्ज की गई हैं। वहीं न्यू साउथ वेल्स में आज 251 नए स्थानीय मामले, ऑस्ट्रेलियन कैपिटल टेरिटरी में 4 और नॉर्दर्न टेरिटरी में 3 नए मामले सामने आए हैं। क्वींसलैंड में आज कोई नया मामला दर्ज नहीं किया गया है। फेडरल सरकार ने घोषणा की है कि वे सोशल मीडिया के स्वास्थ्य कल्याण पर प्रभावों पर एक संसदीय जांच बिठाएगी। इस संबंध में सार्वजनिक सुनवाइयां दिसंबर महीने से शुरू की जाएंगी कि बड़ी तकनीकी कंपनियां खासकर बच्चों के लिए कितनी सुरक्षित हैं। संचार मंत्री पॉल फ्लेचर ने कहा है कि इससे समुदाय में उठने वाली चिंताएं हल की जा सकती हैं।
There's no doubt this is something parents are concerned about. What do I need to do as a parent to keep my children safe? And how do I make sure that these services that my children are using have safety features built in, that community expectations about safety are being met? And this select committee is a very important opportunity for the Parliament to hear about the concerns and perspectives and experiences of parents and families across Australia.
Life Saving Australia आज गर्मियों के पहले दिन अपनी ड्राउनिंग रिपोर्ट जारी करेगी। पिछले साल विक्टोरिया में 20 साल में सबसे अधिक डूबने की दुर्घटनाएं हुई हैं, जिसमें 61 लोग डूबने का शिकार हुए। इमरजेंसी मैनेजमेंट कमिश्नर एंड्रू क्रिस्प का कहना है कि सामने आए आंकड़े चिंताजनक हैं।
We saw 25% of those drowning deaths last year were children under the age of 15. Whether that was in pools, in bathtubs, or in dams, and it is the silent killer, and it happens so quickly, and so we do need to be so conscious and so aware of what's going on.
और अब अंतर्राष्ट्रीय खबरें। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने देशों को चेताया है कि अभी ओमिक्रॉन वेरिएंट के चलते पूर्ण यात्रा प्रतिबंध लागू ना करें। संगठन का कहना है कि शोध अभी जारी है और इस समय पूर्ण प्रतिबंध लगाना जल्दबाजी होगी। विश्व स्वास्थ्य संगठन के साउथ अफ्रीका में स्थानीय वायरोलॉजिस्ट डॉक्टर निक्सी गुमेदे मोएलेस्टी ने कहा है कि ऐसे प्रतिबंधों की जगह कोरोना रोधी टीकों के बराबर वितरण की मांग होनी चाहिए।
If we're still going to continue with the vaccine iniquity in the world, definitely we're going to still seeing this kind of exit events taking place, like the variants coming up, and then we are not fully covered for that matter. And those that are having the access to vaccine, they're the very also the first one to get worried, because they will not allow people from Africa to enter their territory.
दवा कंपनी मॉडर्ना के मुखिया के ऐसी आशंका जताने के बाद कि मौजूदा कोरोना टीके ओमिक्रॉन के खिलाफ कम असरदार हो सकते हैं, बाजारों में भारी गिरावट देखी गई। हालांकि ये साफ नहीं है कि ये वेरिएंट सबसे पहले कहां सामने आया, या ये कितना संक्रामक है, या इस पर कोरोना टीके कितने प्रभावी हैं। उधर अमेरिका में सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के अध्यक्ष का कहना है कि स्वास्थ्य अधिकारी पूरी सक्रियता से ओमिक्रॉन वेरिएंट पर नजर बनाए हुए हैं, पर अभी तक इसके अमेरिका में होने के कोई प्रमाण नहीं मिले हैं। व्हाइट हाउस के मुख्य स्वास्थ्य सलाहकार डॉक्टर एंथनी फॉची का कहना है कि अभी तक कोई असाधारण लक्षण नहीं देखे गए हैं।
Some anecdotal reports out of South Africa that the physicians, mostly private physicians, who've been seeing patients are seeing that they appear to be a less of a severity of illness. But you said quite correctly, most of those are among younger individuals. We believe that it is too soon to tell of what the level of severity is. It's too early to tell. They're hoping that it is going to, across the board, give a lower level of severity, but they don't know that right now.
संयुक्त अरब अमीरात अपनी शत प्रतिशत जनसंख्या तक टीके की कम से कम एक खुराक पहुंचाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। स्वास्थ्य अधिकारियों का कहना है कि करीब 90% जनसंख्या का पूर्ण टीकाकरण हो चुका है। अमेरिका की जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अनुसार इसी के साथ ये खाड़ी देश टीकाकरण में विश्व लीडर बन गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हाल में हुई एक स्कूल में गोलीबारी का शिकार हुए पीड़ितों के परिवारों के लिए अपनी संवेदनाएं जताई हैं।
As we learn the full details, my heart goes out to the families enduring the unimaginable grief of losing a loved one. Apparently, there were somewhere in the order of 9 people shot. And the young man, I think, is, as I understand it from staff, is about 15 years old. And he turned himself in, and he claimed his right against self-incrimination and handed over his pistol. That's all we know about it. But you've got to know that that whole community has to be just in a state of shock right now.
Michigan ke ek high school mein 15 varshiya ek chhatr ne achanak golibari shuru kar di thi, jisme 3 chhatron ki mrityu ho gayi thi aur ek shikshak samet anya 6 ghayal ho gaye the. गोली चलाने वाले छात्र ने ऐसा क्यों किया, ये अभी तक नहीं पता चल सका है। और अब खबरें भारत से। कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर उपजे खतरे के बाद भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए भारत आने से जुड़े नियमों में बदलाव किए हैं। इसको लेकर संशोधित गाइडलाइंस भारतीय समय से रात 12 बजे के बाद यानी 1 दिसंबर से प्रभावी हो गई है। सूत्रों का कहना है कि नए नियमों के मुताबिक दिल्ली एयरपोर्ट पर यात्रियों को 6 घंटे तक का इंतजार करना पड़ सकता है। जोखिम वाली श्रेणी में रखे गए देशों से आने वाले यात्रियों के लिए एयरपोर्ट पर जाँच अनिवार्य दी गई है। सूत्रों का कहना है कि प्रत्येक यात्री के कोविड टेस्ट का परिणाम आने में 4-6 घंटे लग सकते हैं। एयरपोर्ट पर कोरोना का आरटीपीसीआर टेस्ट करने वाली कंपनी 1 घंटे में 400-500 टेस्ट कर सकती है, लेकिन जांच क्षमता बढ़ाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं महाराष्ट्र सरकार ने कहा है जोखिम श्रेणी वाले देशों से आने वाले यात्रियों को 7 दिन के लिए अनिवार्य तौर पर क्वारंटाइन करना होगा। उन्हें इस दौरान दूसरे, चौथे और 7वें दिन आरटीपीसीआर टेस्ट भी कराना होगा। आज यानी बुधवार को भारत की लोकसभा में कोविड-19 पर चर्चा की जाएगी। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कल यानी मंगलवार को कहा था कि लोकसभा में आज बुधवार को कोविड-19 महामारी पर एक अल्प अवधि की चर्चा के लिए समय आवंटित किया है। यह चर्चा नियम 193 के अंतर्गत होगी, जिसके तहत सदस्य कोविड-19 के नए ओमिक्रॉन वेरिएंट के बारे में विवरण मांग सकते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने मंगलवार को संसद में कहा था कि अभी तक देश में कोरोना वायरस के इस नए स्वरूप का कोई मामला सामने नहीं आया है और सरकार ये सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है कि यह देश में ना पहुंचे। और अब डॉलर का हाल। आज यानी बुधवार को ये खबर लिखे जाने तक एक ऑस्ट्रेलियाई डॉलर की भारतीय रुपयों में कीमत 53.65 रुपये और एक अमरीकी डॉलर की तुलना में कीमत 72 सेंट्स थी। और अब खबरें खेल के मैदान से। यूरोपीय संघ ने मांग की है कि चीन पुख्ता सबूत पेश करे कि टेनिस खिलाड़ी पांग शुई सुरक्षित हैं। संघ ने यह भी मांग की है कि उनके यौन उत्पीड़न के आरोपों की निष्पक्ष जांच हो। पांग 3 बार ओलंपिक विजेता रही हैं। एक पूर्व कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता पर आरोप लगाने के बाद से वे सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आई हैं। इन आरोपों को लगाने के बाद से वे बाहरी दुनिया से गिने चुने मौकों पर ही संपर्क में आई हैं, जिसमें से ओलंपिक अधिकारियों से वीडियो कॉल एक था। हालांकि संघ का कहना है कि इससे उनकी चिंताएँ कम नहीं हुई हैं। और अंत में एक नज़र कल यानी गुरुवार को देश के प्रमुख शहरों के मौसम के हाल पर। पर्थ में कल तेज धूप खिली रहेगी। यहां अधिकतम तापमान 29 जबकि न्यूनतम 13 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। एडिलेड में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। यहां अधिकतम तापमान 24 जबकि न्यूनतम 14 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। मेलबर्न में कल तूफान के साथ बारिश की आशंका है। अधिकतम तापमान 29 जबकि न्यूनतम 18 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। देश की राजधानी कैनबरा में कल बरसात की संभावना है। यहां का अधिकतम तापमान 25 जबकि न्यूनतम 17 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। सिडनी में कल आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। यहां अधिकतम तापमान 21 जबकि न्यूनतम 15 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। ब्रिस्बेन में कल बारिश की आशंका जताई जा रही है। अधिकतम तापमान 29 जबकि न्यूनतम 21 डिग्री रह सकता है। डार्विन में कल तूफान के साथ तेज बारिश की आशंका है। अधिकतम तापमान 35 जबकि न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। भारत की राजधानी नई दिल्ली में कल धूप छांव का मौसम रह सकता है। दिल्ली का अधिकतम तापमान 22 जबकि न्यूनतम 13 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। समाचार में आज इतना ही। नमस्कार।